अध्याय 11 अब्राहम को बुलाहट। बाबुल से विसर्जन के पश्चात मूर्ति पूजा भली भांति सर्वव्यापी हो गई और पथराए हुए पापियों को अपने दुष्टतापूर्ण आचरण को निभाने के लिए छोड़कर परमेश्वर ने शेम के वंश से अब्राहम का चयन किया और उसे आगामी पीढ़ियों के लिए अपनी व्यवस्था का संरक्षक बनाया। अब्राहम अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के वातावरण में पला बढ़ा था। परमेश्वर के ज्ञान को संरक्षित रखने वाला उसके पिता का घराना भी अपने चारों ओर के सम्मोहक प्रभावों के आगे समर्पित हो रहा था और उन्होंने यहोवा के स्थान पर अन्य देवताओं की उपासना की, लेकिन सच्चे विश्वास को विलुप्त नहीं होना था। परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए हमेशा एक बकिया कलीसिया को संरक्षित किया है। अखंडित वंश में आदम, शेत, एनोश, मतूशले, नूह और शेम ने युगानुयुग परमेश्वर की इच्छा के अनमोल प्रकाशन को संरक्षित करा था। तेरा का पुत्र इस पवित्र न्यास का उत्तराधिकारी बना। मूर्ति पूजा ने व्यर्थ में उसे हर तरफ से निमंत्रण दिया। अविश्वासियों के बीच विश्वासपूर्ण प्रचलित अधर्म के बावजूद शुद्ध वह दृढ़तापूर्वक एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करता रहा। भजन संहिता 145 आयत 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा अब्राहम को व्यक्त की और उसे मसीह द्वारा संपन्न होने वाले उद्धार और अपनी व्यवस्था की अपेक्षाओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया। अब्राहम को अनगिनत वंशज और राष्ट्रीय महानता का वचन दिया गया, जो उस युग के लोगों के लिए विशेषकर बहुमूल्य था। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। साथ ही विश्वास के उत्तराधिकारी को यह भी आश्वासन दिया गया कि उसके वंश में से जगत का उद्धारकर्ता उत्पन्न होगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, लेकिन इसके परिपूर्ण होने के पहले प्रतिबंध के रूप में एक विश्वास की परीक्षा होनी थी, एक बलिदान की मांग रखी गई। परमेश्वर का संदेश अब्राहम तक पहुंचा। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को उसके प्रारंभिक जीवन की संगति से इसलिए अलग करना आवश्यक था ताकि परमेश्वर उसे पवित्र अभिलेखों का रक्षक होने के महान काम के लिए योग्य ठहरा सके। परिजनों और मित्रों का प्रभाव उस अभ्यास में हस्तक्षेप करता जो परमेश्वर अपने दास को देना चाहता था। चूंकि अब्राहम विशेषतया स्वर्ग के संपर्क में था, उसका अपरिचितों के बीच रहना आवश्यक था। उसका चरित्र सभी लोगों से भिन्न होते हुए विलक्षण होना था। वह अपनी क्रियाविधि को भी इस प्रकार नहीं समझा सका जिस तरह उसके मित्र समझ पाते। आत्मिक बातें आत्मिक रीति से जांची जाती है और उसके प्रयोजन और कार्यकलाप उसके मूर्ति पूजक परिजन नहीं समझ पाए। इब्रानियों 11 आयत 8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अब्राहम का निर्विवाद आज्ञापालन बाइबल में पाया जाने वाला सबसे असाधारण प्रमाणों में से एक है। उसके लिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 आयत 1, जिसके परिपूर्ण होने का कोई बाहरी संकेत नहीं था, उस पवित्र प्रतिज्ञा में विश्वास कर वह अपने जन्म स्थान, अपने परिजनों और अपने घर को छोड़कर यह बिना जाने कि किधर जाएगा वहां के लिए निकल पड़ा जहां परमेश्वर उसे ले जाने वाला था। इब्रानियों 11 आयत 9 में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। ये कहा जा सकता है कि अब्राहम की परीक्षा और उससे मांगा हुआ बलिदान आसान या तुच्छ नहीं थे। अपने देश, अपने परिजनों और अपने घर से वह अटूट बंधन में बंधा था, लेकिन वह बुलाहट की आज्ञा का पालन करने से नहीं हिचकिचाया। प्रतिज्ञा किए हुए देश से संबंधित उसने कोई प्रश्न नहीं किया कि वहां की धरती उपजाऊ और जलवायु स्वास्थ्यप्रद थी या नहीं। यदि वो देश सुखद वातावरण और धन इकट्ठा करने के अवसर प्रदान करता था या नहीं। परमेश्वर ने कह दिया और उसके दास को आज्ञा का पालन करना था। उसके लिए संसार का सबसे सुखदायी स्थान वही था जहां परमेश्वर उसे रखना चाहता था। कई लोग अब्राहम की तरह अभी भी परखे जाते हैं। वे परमेश्वर की आवाज को प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ग से बोलते हुए नहीं सुनते, लेकिन वो उन्हें अपनी समझदारी की घटनाओं और अपने वचन के सिद्धांतों के माध्यम से बुलाता है। उनसे धन और सम्मान का आश्वासन देने वाले व्यवसाय को त्यागने, स्वजातीय व लाभदायक संपर्क को छोड़ने व परिजनों से अलग होने और केवल आत्मत्याग, कष्ट और बलिदान के रास्ते पर चलने की अपेक्षा की जा सकती है। परमेश्वर के पास उनसे करवाने के लिए काम है, लेकिन एक सहज जीवन और मित्रों व परिजनों का प्रभाव उस काम की उपलब्धि के लिए अत्यंत आवश्यक विशेषताओं के विकास में रुकावट डाल सकते हैं। वो उन्हें मानवीय प्रभाव और सहायता से दूर बुलाता है और उन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता का आभास कराता है और केवल उसी पर निर्भर होने के लिए विवश करता है, ताकि वो स्वयं को उन पर प्रकट कर सके। परिचित संगति और अभिलाषित योजनाओं को परमेश्वर की बुलाहट पर त्याग देने को कौन तैयार है? मसीह की खातिर अपने नुकसान को लाभ समझते हुए, दृढ़ और सहर्ष हृदय से परमेश्वर का कार्य करते हुए, कौन नए कर्तव्य को स्वीकार करेगा और अपरीक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करेगा? जो ऐसा करेगा उसके पास अब्राहम का विश्वास होगा और उसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का भागीदार होगा, जिसके सामने इस समय के दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है। दूसरा कुरंथियों 4:17, रोमियों 8:18। स्वर्ग से बुलाहट अब्राहम को सर्वप्रथम तब आई जब वो कसदियों के उस नगर में वास कर रहा था और आज्ञा का पालन करते हुए वो हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। यहां तक उसके पिता का परिवार उसके साथ था और उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा के साथ सच्चे परमेश्वर की आराधना को मिला दिया। ये अब्राहम 13 की मृत्यु तक रहा, लेकिन जब वो अपने पिता की कब्र के पास ही था, ईश्वरीय वाणी ने उसे आगे जाने की कहा। उसका भाई नाहोर और उसका घराना अपने घर और अपनी मूर्तियों को थामे रहे। हारान का पुत्र बहुत पहले मर चुका था और अब्राहम की पत्नी सारै के अलावा केवल लूत ने कुल पिता की तीर्थयात्री जीवन का भागीदार होने को चुना, लेकिन फिर भी ये एक विशाल संप्रदाय था जो मेसोपोटामिया से चला। अब्राहम के पास पहले से ही व्यापक पशुधन और पूरब की संपत्ति थी और वो कई शरणागतों और सेवकों से घिरा हुआ था। वो अपने पूर्वजों के देश से कभी न लौटने के लिए जा रहा था और वो जो कुछ भी उसके पास था, जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, लेकर चला। इनमें से कई सेवा भाव व स्वार्थ के प्रतिफल से उच्चतर प्रतिफल से प्रभावित थे। हारान में रहते हुए अब्राहम और आराधना करने के लिए नेतृत्व किया। ये कुल पिता के घराने से जुड़ गए और प्रतिज्ञा के देश में उसके साथ गए और वे कनान देश में आ गए। शकेम वो जगह थी जहां अब्राहम कुछ देर ठहरा। मोरे के ओक वृक्षों की छाया तले, बाल और गिरिज्जीम पहाड़ों के बीच एक चौड़ी हरी भरी जैतून की वृक्ष वाटिकाओं और धारा प्रवाह स्रोतों से भरपूर घाटी में उसने अपना तंबू गाड़ा। कुलपिता ने एक सुंदर और अच्छे देश में प्रवेश किया था, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश, गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश और तेल वाले जैतून और मधु का देश है। व्यवस्था विवरण 8:7-8। लेकिन यहोवा के उपासक ने देखा कि उस वृक्षयुक्त पहाड़ी और फलदायक समतल क्षेत्र एक पर एक गहरी छाया ठहरी हुई थी। देश में उस समय कनानी थे। अब्राहम अपनी आशाओं के लक्ष्य पर पहुंच चुका था, जहां उसे एक अन्य जातीय वंश द्वारा अधिकृत और मूर्ति पूजा से भरा देश मिला। उन वृक्ष वाटिकाओं में अन्य देवी देवताओं की वेदियां स्थापित थीं और पड़ोस की ऊंचाइयों पर मानव बलिदान की भेंट चढ़ाई जाती थी। ईश्वरीय प्रतिज्ञा को वो पकड़े रहा, लेकिन फिर भी तंबू तानते समय कष्टप्रद पूर्वाभास से स्वतंत्र नहीं था। फिर यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, इस आश्वासन से उसका विश्वास दृढ़ हुआ कि ईश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी, जिससे वो दुष्टों की कृपा पर नहीं छोड़ा गया। उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अभी तक वो पथिक ही था और जल्द ही वो बेतेल के निकट एक स्थान पर आ गया और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर का मित्र अब्राहम हमारे लिए एक उपयुक्त उदाहरण है। उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। जहां भी वो अपना तंबू खड़ा करता था, पास ही वेदी भी स्थापित करता था और तंबू में रहने वाले सभी लोगों को सुबह और शाम के बलिदानों के लिए बुलाता था। तंबू के हटाए जाने के बाद भी वेदी वहीं रही। आगामी वर्षों में कनानी कबीलों में कई थे जिन्होंने अब्राहम से अनुदेश लिए और जब भी उनमें से कोई वेदी पर आता था, उसे ज्ञात होता था कि उससे पहले कौन वहां आया, और जब वो अपना तंबू वहां खड़ा करता तो वो वेदी को सवारता और सच्चे परमेश्वर की आराधना करता। अब्राहम दक्षिण की ओर अग्रसर होता गया और उसके विश्वास को पुनः परखा गया। आकाश ने वर्षा को थाम लिया, घाटियों में नदियों ने बहना बंद कर दिया और मैदानों की घास सूख गई। गाय बैलों और भेड़ बकरियों के लिए चरागाह न बचे और छावनी में भुखमरी का भय उत्पन्न हो गया। क्या कुलपिता ने अब भी परमेश्वर के नेतृत्व पर प्रश्न नहीं उठाया? क्या वो कसदियों के मैदानों की समृद्धि की ओर चाह से नहीं देखता था? सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि अब्राहम क्या करेगा जब एक के बाद एक कष्ट उसके ऊपर आए। जब तक उसका विश्वास अविचलित था, उन्हें आशा दिखाई देती थी। वे आश्वस्त थे कि परमेश्वर अब्राहम का मित्र था और वह अभी भी उसका मार्गदर्शन कर रहा था। अब्राहम परमेश्वर के नेतृत्व को नहीं समझा सकता था। उसकी अपेक्षा परिपूर्ण नहीं हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सच्ची प्रार्थना के साथ उसने चिंतन किया कि किस तरह वो अपने लोगों और पशु समूह के जीवन को संरक्षण देगा, लेकिन परिस्थितियों को परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को हिलने नहीं देगा। अकाल से बचने के लिए वो मिस्र की ओर चल दिया। उसने कनान को त्यागा नहीं और ना ही अपनी विपत्ति से कसदी देश में वापसी की, जहां से वो आया था और जहां खाद्य सामग्री का अभाव नहीं था, लेकिन उसने प्रतिज्ञा के देश के निकट एक अस्थायी शरण स्थान ढूंढा ताकि वो जल्द ही उस जगह लौट आए जहां परमेश्वर ने उसे रखा था।
परमेश्वर ने अपनी पूर्व दृष्टि में अब्राहम की ये परीक्षा उसे धैर्य, विश्वास और समर्पण का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से ली, ताकि इसका वर्णन अभिलेखों में उन लोगों की भलाई के लिए किया जा सके जो आने वाले समय में यातनाएं सहेंगे। परमेश्वर अपने बच्चों का नेतृत्व अज्ञात तरीके से करता है, लेकिन जो उसमें विश्वास बनाए रखते हैं उन्हें कभी भूलता या छोड़ता नहीं। उसने अय्यूब पर कष्ट आने दिए, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। उसने अतिप्रिय यहुन्ना को पतमुस के एकांत में जाने दिया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र ने उससे वहां भेंट की और वहां उसे अनश्वर प्रताप के दृश्यों के दर्शन हुए। परमेश्वर अपने लोगों पर विपत्तियां आने देता है, जिसमें कि वे अपनी स्थिरता और आज्ञाकारिता से आत्मिक उन्नति पाएं और उनका उदाहरण दूसरों के लिए मनोबल का स्रोत हो। यर्मया 29 आयत 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि नहीं वरन कुशल की है। वही परीक्षा जो हमारे विश्वास को कठोरता से परखती हैं और हमें ऐसा आभास कराती है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें परमेश्वर के और निकट ले जाती है, ताकि हम अपने सारे बोझ उसके चरणों में रख दें और उस शांति का अनुभव करें जो वो हमें उसके बदले में देना चाहता है। परमेश्वर ने सदैव ही अपने लोगों को परीक्षा की भट्टी में परखा है। भट्टी के ताप से ही मसीही चरित्र के खरे सोने को धातुमल से अलग किया जा सकता है। परमेश्वर उस परीक्षा का निरीक्षण करता है। उसे ज्ञात है कि बहुमूल्य धातु के शुद्धिकरण के लिए किस चीज की आवश्यकता है, जिससे कि उसके प्रेम का प्रकाश प्रतिबिंबित हो सके। गुप्त कष्टकर परीक्षणों से परमेश्वर अपने दासों को अनुशासित करता है। वो देखता है कि कुछ के पास ऐसी योग्यताएं हैं जो उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, और उन्हीं लोगों को वो परीक्षा में डालता है। अपनी दूरदर्शिता में वो उन्हें उन पदों पर लाता है
जहां उनके चरित्र की परख होती है और उनके वो अवगुण और दुर्बलताएं सामने आती हैं जिनका उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं होता। वो उन्हें इन अवगुणों को सुधारने का अवसर देता है ताकि वे उसकी सेवा के लिए उपयुक्त हो सकें। वो उन्हें उनकी दुर्बलताएं दिखाता है और उन्हें उस पर निर्भर होना सिखाता है, क्योंकि वही उनका सहायक और सुरक्षा है। इस तरह उसका लक्ष्य पूरा होता है। जिस महान उद्देश्य के लिए उन्हें योग्यताएं दी थीं, उसे परिपूर्ण करने के लिए वे तैयार, अनुशासित, शिक्षित और प्रशिक्षित किए जाते हैं। जब परमेश्वर उन्हें काम के लिए बुलाता है, वे तैयार होते हैं और धरती पर परिपूर्ण होने वाले काम में स्वर्गदूत उनके साथ जुड़ सकते हैं। मिस्र में वास करते समय अब्राहम ने प्रमाण दिया कि वो मानवीय दुर्बलताओं और त्रुटियों से अछूता नहीं था। इस तथ्य को छुपाने में कि सारे उसकी पत्नी थीं, उसने ईश्वरीय सुरक्षा में अविश्वास, और जिसका उदाहरण उसने प्रायः वह उदारता से दिया था, उस महान विश्वास और साहस के अभाव को प्रकट किया। सारे देखने में सुंदर थीं और अब्राहम को यकीन था कि वे सांवले मिस्र के लोग उस सुंदर विदेशी के लिए ललचाएंगे और उसे पाने के लिए उसके पति की हत्या करने में नहीं हिचकिचाएंगे। उसने सोचा कि सारे को अपनी बहन बताने में वो झूठ का अपराधी नहीं होगा, क्योंकि वो भले ही उसकी मां की नहीं लेकिन उसके पिता की पुत्री थी। लेकिन उनके बीच वास्तविक संबंध को छुपाना धोखा था। सुपरिभाषित सत्यनिष्ठा से किसी भी प्रकार के विपथन को परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिल सकती। अब्राहम के विश्वास में कमी के कारण सारे गंभीर संकट में पड़ गईं। उसकी सुंदरता की सूचना पाकर उसे पत्नी बनाने की मंशा से मिस्र के राजा ने उसे महल में ले जाने को कहा, लेकिन दयावान परमेश्वर ने शाही घराने पर विपत्तियां भेजकर सारे की रक्षा की। इस प्रयोजन से सम्राट ने इस विषय की सच्चाई को जाना और उसके साथ हुए छल पर क्रोधित हो अब्राहम को उलाहना दी और ये कहते हुए उसकी पत्नी को लौटा दिया, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा।
राजा ने अब्राहम पर बहुत उपकार किया। अभी भी फिरौन अब्राहम और उसके समूह को किसी भी तरह की हानि के पक्ष में नहीं था, वरन उसने उन्हें अपने राज्य से बाहर सुरक्षित पहुंचाने हेतु एक सुरक्षाकर्मी को आज्ञा दी। उसके शासनकाल में नियम बनाए गए जिनके द्वारा मिस्र के लोगों का विदेशी चरवाहों के साथ खाने पीने के माध्यम से संपर्क को वर्जित किया गया। फिरौन का अब्राहम को विदा करना उदारतापूर्ण और नम्र था, लेकिन उसने उसे मिस्र छोड़ देने को कहा, क्योंकि वह उसे रुकने की अनुमति देने का साहस नहीं कर पाया। वह अज्ञानतावश अब्राहम को गंभीर चोट पहुंचाने को था, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और सम्राट को एक गंभीर पाप करने से बचाया। इस विदेशी में फिरौन ने उस आदमी को देखा जिसे परमेश्वर ने सम्मानित किया था, और फिरौन अपने राज्य में उसके होने से भयभीत था, जो स्पष्ट रूप से ईश्वरीय अनुग्रह की छत्र छाया में था। यदि अब्राहम मिस्र में रह जाता तो उसकी बढ़ती हुई धन संपत्ति और आदर मिस्र के लोगों में लालच और ईर्ष्या उत्पन्न करता, और ये उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था, और इसके लिए फिरौन स्वयं उत्तरदायी होता और शाही घराने पर दोबारा विपत्तियां आ सकती थीं। फिरौन द्वारा दी गई चेतावनी भविष्य में अब्राहम का अन्य जातियों के साथ संपर्क में सुरक्षा प्रमाणित हुई, क्योंकि इस विषय को गुप्त नहीं रखा जा सकता था, और यह देखा गया कि जिस परमेश्वर की अब्राहम आराधना करता था वो उसकी रक्षा करता था और उस पर की गई किसी भी चोट का बदला लिया जाना निश्चित था। स्वर्ग के राजा की किसी भी संतान के साथ गलत करना खतरनाक चीज है। चुने हुए लोगों के बारे में अब्राहम के अनुभव के इस अध्याय से संबंधित भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। भजन संहिता 105 आयत 14-15। मिस्र में अब्राहम के और सदियों पश्चात उसके वंशजों के अनुभव में एक रुचिकर समानता है। दोनों ही अकाल की वजह से मिस्र देश में गए और दोनों वहां रहे। उनके पक्ष में ईश्वरीय न्याय के प्रकटीकरण से मिस्र के लोगों में उनका डर उत्पन्न हुआ और अन्य जातियों द्वारा दी गई भेंटों से समृद्ध होकर वे वहां से बहुत धन संपत्ति लेकर निकले।